करें उसके और में इसके रह रहे उसको कह रहा था काश के इशारा कर काश का वो था जिसने काश पढ़ ली उसके और में जिसने सोचते कर ली आज की काश का वो उसको कभी भी नहीं जिंदगी में दोबारा आज की काश का वो कर नहीं मैं ये नहीं लगता ये शरीर के अमल है कि कुछ अमल है उसके ऊपर उसको कर लिए जाए तो वो अमल हमारा जखीरा बन जाता है और खुदा ना करे अगर उसमें किसी ने सुस्ती कर ली तो सुस्ती करने से वह वक्त तो गुजर जाता है लेकिन करने की चीज़ें रह जाती हैं। और समझदार आदमी वो है कि जो अपने आप करके तैयारी के साथ किए आकर्ष तैयारी के साथ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं एक बात फरमा देते हैं कि अजीब माहौल हो गया है। क्या माहौल हो गया है हमारे भाई साहब फरमा देते हैं कि जिसको भी देखो वो बातें दुनिया में जीने की करता है कोई मरने की बातें नहीं करता। असल तो हम सब मरने के लिए पैदा हुए हैं मशगूल है मरने की तैयारियों में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जिसको भी देखो वो अपनी चीजें संवारने में लगा हुआ है अपनी अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने में लगा हुआ है ऐसे जी रहे हैं कभी मरना ही नहीं हालांकि रोज वो मौत के करीब आ रही है और हो सकता है कि इस साल के मुर्दों में आ चुके हों उसे पता भी ना हो। दो चीजें हम सब भुला चुके हैं गफलत उससे हो रही है अल्लाह से गफलत हो रही है अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह से गफलत हो रही है और आखिरत से गफलत हो रही है। अल्लाह से गफलत का मतलब कि अल्लाह हमें देख रहे हैं और हमारे हर अच्छे किए का हमें बदला मिलेगा और हमारी हर बुराई का हमें भुगतना पड़ेगा इसका इस्तेहज़ा खत्म हो गया। जब इसका ध्यान रहता है तो करने की चीजें मौके पर छूटती नहीं और न करने की चीज अगर हो जाए तो आदमी को नदामत पछतावा और अफसोस होता है मुझसे ये चीज हुई है इसकी मैं तौबा तिल्ला कर रहा हूँ इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ वरना फिर उसका 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 भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा जो भारी हो जाएगा। ये जितना भी लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आदमियों के करतूत का बदला होता है जिसके साथ जो भी हो रहा है इंफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर घरेलू मसाइल किसी के हैं या इज्तिमाई मसाइल है अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ये हमने किसी पर जुल्म नहीं किया हम आपको कभी बोलना नहीं ले रहा नहीं हम किसी पर जुल्म नहीं करते या फिर आदमी जो हरकतें करता है उसका उसको हम बदला देते हैं बेमा का सबक ईदी को कई लोगों जो तुम करते हो उसके हम तुम्हें बदला देते हैं। तो हम क्या करते हैं आदमी कुछ करने की चीज़ें छोड़ देता है वो भी गलत बात है और कुछ न करने की चीज़ें करता है ये भी गलत बात है ये दोनों ना करना है करने की चीजों को नहीं करना ये भी गलत बात और करने की चीजों को नहीं करना ये भी गलत बात। कि आदमी उसे पता भी नहीं होता उसकी जिंदगी में इसका इसका इसकी जिंदगी आधी बन जाती है चीजों में तो करने की चीजों के नफे उससे वो महरूम होता चला जाता है और न करने की चीजों का नुकसान उसके ऊपर आता चला जाता है फिर वो कभी ना कभी बाबा जोड़ा उसके ऊपर आता है और अल्लाह का बाबा जोड़ा ऐसा होता है इज्तिमाई तौर पर हम उसको रोक सकते हैं ना इंफरादी तौर पर रोक सकते हैं दुनिया में इज्तिमाई हालात आते हैं तो उसको कोई रोक सका है। आज सैटेलाइट का जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सारी दुनिया के सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी सब मिलकर क्या आने वाले बाबा जोड़े को रोक सकते हैं इज्तिमाई जो हालात आते हैं कोई नहीं रोक सकता। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया में हालात आए और अमरीका और कनाडा में तो हर साल 5-7 जंगलों में आग लगती है अलग अलग इलाकों में और हजारों लोगों को इधर से उधर आना पड़ता है। अभी हमारे पड़ोस के मुल्क में अजीब बला आई है तो सारी दुनिया की तंजें वहाँ पहुंची इलाज के लिए लेकिन सब लोग नाकाम होकर जा रहे हैं। एक जमाना था उन्होंने सबसे सुपर पावर और सुपर टेक्नोलॉजी का वहाँ हब बनाया था इलाज का हमारे पड़ोस में हजी अब्दुल्ला साहब थे तो उनको एक आदमी ने अगर कहा वो लोग बना रहे ऐसा ऐसा बड़ा हब इलाज का तो वो कहने लगे कि दुनिया भर की बीमारियों को दावत दे रहे हैं कि वहाँ बीमारियाँ आएगी बीमारियों को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के फैसले उतारने की बात कि जैसे बंदों के अमल आसमानों पर जाएंगे ऐसे ही आसमानों पर से बंदों के फैसले उतरते हैं और अल्लाह पाक बंदों की अपने फरिश्तों के जरिए से हिफाजत करते हैं लेकिन जब बंदों के देवता को तय कर देते हैं, फरिश्ते बीच में चढ़ जाते हैं, फिर उनके साथ जो हादसे होने होते हैं वो हादसे होते हैं। बाजे मतलब बंदा कहता है वो ऐसा होते होते रहते हैं, ये बाल बाल बच गया, तो ऐसा नहीं होता कि वो बाल बाल बच गया और ऐसा होते होते रह गया। अल्लाह का गैबी निजाम उसके साथ हुआ कि जिसको बचा लिया गया। और बाजे मतलब कोई चीज नहीं होती और आदमी एकदम टप हो जाता है, क्या हुआ? अल्लाह का गैबी निजाम ने उसके अंदर काम कर दिया। इसलिए अल्लाह पाक ने बंदों को मोटे मोटे अमल दिए ताकि ये अमल अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, कि आदमी इन अमल के जरिए से अल्लाह से करीब होता है। वो अमल हमसे ऐसे गुजर जाते हैं हमें पता भी नहीं होता, हालांकि वो जखीरा होता है, बड़ा जखीरा। मिसाल के तौर पर आज जुमा का दिन है, अब इतना बड़ा जुमा का दिन, वो हर हफ्ते हमारे ऊपर से गुजरता है। हमने और आपने सोचा जुमा का दिन क्या है? किताबों में लिखा है कि उलमा के नजदीक जुमा का दिन ईद उल फितर और ईद उल अधा से ज्यादा वजनदार है। ईद उल फितर और ईद उल अधा से ज्यादा वजनदार है, अल्लाह के पास इसकी कीमत और ज्यादा है, ईद उल फितर और ईद उल अधा से। इसीलिए इसके एहतमाम की तरगीब दी गई। किताबों में आता है कि इसका एहतमाम क्या करो, कि जुमा के दिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम सलाम एहतमाम फरमाते थे। क्या एहतमाम फरमाते थे? हमें गुस्ल का हुक्म दिया कि जुमा के दिन हर आदमी को गुस्ल करना चाहिए, और ऐसे गुस्ल करो जैसे तुम जनाबत का गुस्ल करते हो, इतना एहतमाम करो। फरमाया कि इस गुस्ल में अल्लाह पाक बालों के जड़ों के अंदर के गुनाहों को भी निकाल देंगे, सगीरा गुनाहों को। इतनी इसके फायदे हैं। जुमा की तैयारी के लिए जाओ, कि ये मुसलमानों के जमा होने का दिन है, इज्तिमाई फिक्रों के जमा करने का दिन होता है। जब मस्जिद में मुसलमान आता था, एक दूसरे की खैर खबर लेता था, और जो मिंबर पर बैठता था, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह रिवायत करते हैं, उनको हमदर्दी की बातें समझाते थे, एक दूसरे की खैर खबर लेने का मौका मिला है। यहाँ के लोग मस्जिद में आएंगे, अतराफ वाले आएंगे, एक दूसरे की खैर खबर पूछो तो तुम भी जरूर उसमें जाओ, इसकी ताकीद की गई। और गंदे होकर ना जाओ, तुम्हारे पास जो अच्छे से अच्छा लिबास हो वो जुमा के दिन पहनो, और कोशिश करो सफेद लिबास पहनो जुमा के दिन। हमारे नबी अलैहिस्सलाम इसकी तरगीब फरमाते थे। और जल्दी मस्जिद में जाया करो, जल्दी मस्जिद। जुमा के दिन में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को वजूद दिया, और जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला। जुमा के दिन ही अल्लाह पाक ने उनकी तौबा को कबूल कर दिया, और जुमा के दिन अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें रखी, इतनी बरकत रखी, ये जहन्नम जो है जहन्नम, अल्लाह पाक उसको रोज तेज करते हैं, उसकी भट्टी को रोज तेज करते हैं, रोज भट्टी तेज होती है। लेकिन जुमा के दिन की अल्लाह के वहां इतना एहतराम है अल्लाह की नजर में, कि जुमा के दिन की अजमत की बरकत से अल्लाह पाक जुमा के दिन भट्टी को तेज नहीं करते। कि क्या बात है कि जुमा के दिन की अल्लाह के वहां अजमत है। किताबों में आता है जुमा की रात में या जुमा के दिन में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से महफूज कर लेते हैं। क्या बात हो गई? कोई बात नहीं, अल्लाह के वहां जुमा, अल्लाह ने लोगों को ये अमल तय करके बताया कि जुमा इतनी अहम चीज है। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि और क्या चीज उसमें बेहतर है, जुमा की रात, जुमा की सुबह फजर की नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये अफजल तरीन अमल है जुमा के दिन। अब आज की शबे जुमा गई, ये शबे जुमा, जुमेरात और जुमा के बीच की रात को शबे जुमा कहते हैं। शबे जुमा के, शबे जुमा में फजर की नमाज को जमात के साथ मस्जिद में पढ़ना, ये जुमा का बेहतरीन अमल है। जुमा के दिन क्या करना है? सूरह कहफ का एहतमाम कर। हमारे नबी अलैहि सलाम ने अपने बाबा, अपने चचा हजरत अब्बास को बुलाया, वो मेरे चचा मैं उनको एक हदिया दूं, एक तोहफा दूं, कोई समझे मैं हदिया देना चाहते हो। फिर उनको सलातुत तस्बीह सिखाई, सलातुत तस्बीह। और सलातुत तस्बीह सिखाने के बाद फरमाया कि अगर तुम हो सके इसको रोज पढ़ो, सलातुत तस्बीह को रोज पढ़ो। और लोग ऐसे हैं जो रोजाना दो दो मरतबा सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं। और हमने देखा मशहूर जो हमारे डॉक्टर अशरफ साहब, हम लोग सफर में थे, रोज सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, रोज सलातुत तस्बीह। मैंने उनको देखा रोजाना 100 पेशेंट को देखते हैं, रोजाना मामूल होता है। ऐसे तो एक साथी को देखा रोजाना दो मरतबा पढ़ते, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम पढ़ सको तो रोज एक मरतबा, रोज पढ़ो इसको। फिर फरमाया कि अगर रोज नहीं पढ़ सकते तो जुमा के दिन जरूर पढ़ो इसको, और जुमा के दिन जुमा से पहले पढ़ लिया करो। हमारी मस्जिदों में इसका मामूल नहीं है, वरना और मस्जिदों में तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह लोग पहले से आ जाते हैं, और मस्जिदों में सफों में सलात तस्बीह पढ़ी जा रही है। और खासकर अभी हमारे मुल्क से आगे यूरोप के मुल्क हो गए, दुनिया के मुल्कों के लोग मुल्क आगे बढ़ गए। मैं रमजान से मौलाना से पूछ रहा था, मौलाना रमजान बर्तानिया का कैसा है? मौलाना रमजान में आए थे बर्तानिया से, हमारे से ज्यादा आगे वो लोग निकल गए, हमारे बाद वहां इस्लाम पहुंचा, और हमसे ज्यादा मशहूर लोग हैं, मशहूर लोग, और अपनी इतनी मशहूर जिंदगियों में, और अच्छे मतबल लोग हैं, मतबल लोग। अभी वहां के घर वाले गए थे, मुझे रायपुर में मिले, क्या हाल है? मैं पूरा पूछ रहा था, और मिशनरी में गए थे आप पोर्टुगल के, जहां मैं अपना जहाज लेकर गया था, अपने फ्लाइट लेकर गया, ऐसे मशहूर मशहूर लोग। उन उनके वहां हमको ये जवान हमारे बच्चे इस तरह से लिबासों में नजर नहीं आते, उनके औरतें इन लिबासों में हमें बर्तानिया के रास्तों पर नजर नहीं आते। अभी वहां प्रोटेस्ट हो रहा था 2-4 दिन पहले, उसका फोटो लाइव हुआ था, आपने देखा होगा उनकी बच्चियां मुहज्जब थी प्रोटेस्ट में, रैली में उनकी औरतें निकाब और बुर्का में थी। जो लोग यूरोप गए उनको देखो, पूरा अपना रास्ता गुजर जाओ, उनकी लड़कियां वो इस तरह नहीं नजर आती जो हमारे बाजार में नजर आती है। कुछ नहीं, वो एक मेहनत का नतीजा है, एक मेहनत का नतीजा। उनकी मस्जिदों में आप जुमा में चले जाओ, 1-2 घंटे पहले सब पूरी हफ्ते कुरान की होती है, और जगह नहीं थी उनकी मस्जिदों में, ऐसी उन्होंने एक बात को लिया। अल्लाह पाक ने दुनिया में भी ऐसा खुशहाल किया, दुनिया भरी पड़ी है उनके पास, और दीन भी अल्लाह का भर दिया। जब वो लोग यहाँ से हिजरत करके गए थे, वहां के लोगों ने कहा था ये इंडियन लोग आए हैं, ये तो सब सीखे हुए हैं, इनको हमें नहीं छेड़ना, उनकी नस्ल हमारी होगी, ऐसा कह रहे थे। उनकी नस्ल को हम ऐसे पट्टी पढ़ाएंगे कि उनकी नस्ल नसरानी हो जाएगी। अब उनकी नस्ल ने ऐसे पंजे में घड़ दिए हैं कि अपने मुल्क में तो सफल गए, पूरी यूरोप के जो ममालिक है, यूरोप के ममालिक में उन्होंने दीन की फिजा कायम कर दी, और अब माशाल्लाह उसके उससे हटकर दुनिया के और ममालिक में दीन का मेला इन्होंने चलाया है, कि उनके बड़ों ने इनको दीन भी दिया और उनके बड़ों ने उनको अपनी उनकी दुनिया भी दी। घर में तालीम का निजाम तो मकतब इतना दूर होता है, घर दूर दूर होते हैं, रोज एहतमाम से गाड़ियों में उनके वालिदैन उनको छोड़ने आते हैं। हमने देखा अपनी आंखों से कि या तो अगर अपा नहीं तो हम ही छोड़ने आती है, और मस्तूरात का प्रोग्राम हो गई, कितनी मस्तूरात थी, क्योंकि जितनी गाड़ियां हैं इतनी मस्तूरात है, उनकी मस्तूरात की गाड़ियां इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ऐसी कि कहीं नजर ना आए कि ये इस्लामियत की औरतें, और नुसरत करती है जबरदस्त। अभी हमारा इज्तिमा हुआ बरतानिया में, अभी इसी साल में 20,000 का हुआ था, मस्तूरात का सबका खाना बनाकर घरों से भेजा। ये निजाम दुनिया का बना कि इनकी मस्जिदें देखें तो जुमा के दिन आमाल होती है, सभी कुछ होती है, कि अल्लाह पाक ने आमाल के एहतमाम से जो अमलों की बरकत है वो इसमें भर दी है। हम अमल को हल्का समझते हैं, अमलों के साथ अल्लाह ने अर्थात को जोड़ दिया। हम इन मामूल अमाल को हल्का ना पढ़ रात सालों में पढ़ी जा रही थी बात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो रहा था, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इयादत के लिए हाजिर हुए, तो कहा कि क्या बात है, किस बात का गम है तुम्हें, मेरे गुनाहों पर रो रहा हूँ, किस चीज की तुम्हें तमन्ना है, अल्लाह की रहमत की तमन्ना है। फिर फरमाया कि मैं डॉक्टर को बुला लूँ तुम्हारे लिए, फिर जिस डॉक्टर का हक इलाज है उसी डॉक्टर ने मुझे बीमार कर रखा है, उसके फैसले पर आ दे। फिर फरमाया तुम्हारे लिए कुछ बंदोर तय कर दूँ, तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे मरने के बाद गम आए, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चों की फिक्र करते हो, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में सूरह वाकिया रोजाना पड़ी जाएगी उनके घर में कभी फख्र फाका नहीं आएगा। ये एहसास है हमारे वहाँ अमलों की बरकत है। अब सूरह वाकिया 2-3 लोगों की बात है, लेकिन बहुत कम हमारे वहाँ मामूल है सूरह वाकिया का पढ़ना। सूरह सजदा इतना बड़ा हथियार है कि अगर मगरिब के बाद इसका पढ़ लिया जाए तो रुकू है, लेकिन कब्र से बचाव का जरिया है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम एक मतलब सफर कर रहे थे, रास्ते में जगह कायम किया तो वहां से कब्रों से हवा आ रही थी, इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है। फिर बशारा सुनाई कि जो आदमी रात को सोने से पहले सूरह सजदा और सूरह तबारक लदी पढ़े अल्लाह कब्र के खौफनाक अज़ाब से बचा। कब्र मामूली चीज है, कब्र मामूली चीज है। किताबों में अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र रोजाना ऐलान करती है, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरे का घर हूँ, रोज कब्र ऐलान करती है, सिवाय इंसान और जिन्नातों के, हर आदमी इसको सुनता है। और फरमाया कि उसमें जो मंजर होता है अगर लोगों को बता दिया जाए तो लोग अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दें, ऐसी दहशतनाक वो जगह है। अब उससे बचने का आसान रास्ता है, कि क्या रास्ता है कि रोजाना सूरह सजदा की तिलावत की जाए, सूरह तबारक लदी की तिलावत की जाए, लेकिन हमारे वहाँ मामूल में ये चीज छुटी हुई पड़ी है। अल्लाह का ऐसा नहीं, हमारी मस्जिद में कुछ लोग हैं जो बहुत एहतमाम करते हैं, हम इनको मामूली ना समझे, ये अमल है। मगरिब के बाद सूरह वाकिया पढ़ लेना, सूरह सजदा पढ़ लेना, सूरह तबारक लदी पढ़ लेना, मस्जिद में आए तो मस्जिद में सही अमल में बैठना एक अमल है। अब मस्जिद में आए हैं पीछे बैठ जाते हैं, किताबों में आता है जो पहले सर पर बैठते हैं अल्लाह उसके ऊपर रहमत नाज़िल करते हैं, रहमत। तो किताबों में आता है अगर लोगों को पता चल जाए कि वो अमलों का कितना अजर है, एक सफ में अमल अव्वल बैठने पर और दूसरा अजान कहने पर, हमारे वहां अजान मौज़िन भंडारी हो जाता है, इतनी उसकी इज्जत है, इतनी अल्लाह की इज्जत, अल्लाह के कलमे को बुलंद करता है। किताबों में आता है कि सबके जिस्म को कब्र का कीड़ा खा जाएगी, लेकिन मुअज्जिन के जिस्म को कब्र के कीड़े नहीं खाएंगे, अंबिया के जिस्म को नहीं खाएंगे, नबियों के जिस्म अंदर जिंदा होते हैं उनको नहीं खाते, दूसरा शहीद के जिस्म को नहीं खाएंगे, और तीसरा अजान देने वाले के जिस्म को कब्र के कीड़े नहीं खा सकते, और कल कयामत के दिन इज्जत के साथ उठाए जाएंगे। तो इन दोनों का सवाब, पहले सब का सवाब और अजान देने का सवाब, अगर लोगों को पता चल जाए तो लोग चिट्ठी डालेंगे, मेरा नंबर लगे गया, मेरा नंबर, और जो लोग पीछे बैठते हैं आज अपने रिवायत से वो पढ़ रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो पीछे होंगे अल्लाह उनको अपने रहमत से पीछे ही करेगा, पीछे बैठने की आदत न डाले। सफ में मस्जिद में आगे बैठे, मस्जिद वकार की जगह है, वकार सुकून की जगह है, मस्जिद में सुकून कायम करे। मस्जिद में दाखिल होती है हम पर, हम अल्लाह के दरबार में दाखिल हो रहे हैं, हम उसमें शोर न करें। अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे और होश की शोर यहाँ आ रही थी, होश पर जो शोर कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लोग डरते हैं कि भाई कुछ कहेंगे तो कुछ बदतमीजी होगी, ये कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह सबको देख रहा है और अल्लाह सबको उसका जवाब देगा। मस्जिद में शोर करना ऐसा मना है, एक मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एतिकाफ में एक आदमी जोर से कुरान पढ़ रहा था तो हुजूर ने पर्दा उठाया और पर्दा उठा कर फरमाया कि भाई इतनी जोर से तिलावत न करो, मस्जिद वालों को हर्ज होगा और लोगों को हर्ज होगा। मस्जिद में जोर से कुरान पढ़ने से मना किया, जोर से कुरान पढ़ने से बात करना तो कोई सवाल ही नहीं है। हमारा तो जवान मस्जिद में आते आते भी मोबाइल करता है, बहुत पर बैठते ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या अल्लाह नहीं देख रहा है, क्या अल्लाह के वहां से उसका बढ़ता जवाब नहीं आएगा। क्या कहता है जब मस्जिद में पर बात करता है दुनिया की बातें तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के लिए खामोश हो, जब दोबारा बात करता है फरिश्ते कहते हैं अल्लाह के लिए खामोश हो, और जब वो तीसरी मरतबा बातें करता है तो फरिश्ते कहते हैं वो अल्लाह के दुश्मन खामोश हो, अल्लाह के दुश्मन तो खामोश हो। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में बैठे थे, कुछ आदमी बातें कर रहे थे मस्जिद में, तो वो तिलावत कर रहे थे, उन्होंने देखा मस्जिद में बात हो रही है, तो उस जमाने में फर्श कच्चा था तो कंकर उठाया और उसको यूं मारा, उसको मुतवज्जे करने के लिए आवाज नहीं दी, भाई आवाज नहीं दी, उसको यूं कंकर मारा और मुतवज्जे किया। और फिर एक आदमी को कहा उन दोनों को बुलाओ, बुला करता कहाँ के रहने वाले, हम ताइफ के हैं, हाँ अगर तुम मदीने के होते तो मदीने में हुजूर की मस्जिद में बातें करते हो, अगर तुम मदीने के होते तो मैं कोड़े से ऐसे तुम्हारी खबर लेता तुम्हें पता चल जाता, मस्जिद में तुम बातें करते हो, यूं करके उन दोनों मुतवज्जे किया, मस्जिद में बातें कर रहे हो, हमारे वहाँ ये चीजें आम हो गई। तो इसका नुकसान ये होता है कि आदमी अल्लाह की नजर से गिर जाता है, और जब अल्लाह की नजर से बंदा गिर गया तो उसका भलता नहीं होता, उसकी भलेवार नहीं होगी, और उसके भलेवार का मतलब नहीं है वो मालदार नहीं होगा, अगर उसके मुकद्दर में मालदार होना है वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन फिरौन भी करोड़पति बना था, कारून भी करोड़पति बना था, नमरूद भी करोड़पति बना था, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में इज्जत नहीं दी, उसकी औलादों को उस पर मुसल्लत कर दी, हमारी औलादें हमारे खिलाफ होगी, हमें घर में चैन नहीं मिलेगा। अल्लाह के अल्लाह को अजाब देने के मुख्तलिफ अल्लाह के तरीके हैं, अल्लाह कहते हैं मेरे बहुत लश्कर है, लिल्लाहि जुनूद, अल्लाह के बहुत लश्कर है, अल्लाह अपने लश्कर में से किसी लश्कर को उस पर मुसल्लत कर देंगे। बीवी भी अल्लाह का लश्कर है, बच्चे भी अल्लाह के लश्कर है, नौकर भी अल्लाह के लश्कर है, नौकर के हाथों चटाई लपेट देंगे अल्लाह पाक, पार्टनर के हाथों चटाई लपेट देंगे, और सभी औलादों की से मुतमन सभी औलादे हमारे लिए दरदर सब बनेगी, हम इनको मालूम न समझे, ये अल्लाह के घर है, मस्जिद है, मस्जिदों में हम पैदल आओ, पैदल आने के फजाइल है। हमारा बच्चा बाइक लेकर आता है और बाइक लेकर आने से दो नुकसान होते हैं, एक तो नुकसान ये होता है उसको अल्लाह के रास्ते में पैदल चलने की फजीलत नहीं मिलती, हमारा मोहल्ला कितना दूर है, हम पैदल आए। एक साहब हुजूर के जमाने में थे, उनका घर दूर था, उन्होंने नियत की कि मैं करीब रहने चला जाऊं हुजूर की मस्जिद से, तो हुजूर को पता चला कि करीब मत आओ, वहीं से रोजाना पैदल आया करो, जब जो जितने तुम पैदल चल कर आते हो तुम्हारे निशानात के कदम मिले जाते हैं, किताबों में आता है हर कदम पर नेकी मिली जाएगी, और हर कदम गुनाहों की माफी का जरिया है, हर कदम गुनाहों की माफी का जरिया है, और अल्लाह के रास्ते में ये चलने का शुमार होता है। जैसे जमातों में जाते हैं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नमाज के लिए आना ये भी अल्लाह का रास्ता है, उस जिस्म पर जो दर्द गुबार लगेंगे ना उस जिस्म पर अल्लाह जहन्नम की आग के धुएं को हराम कर देंगे। हमारे साथी हम सब पैदल आए मस्जिद में, मस्जिदों में पैदल आए और मस्जिद के आधार के साथ आए, फिर हम गाड़ियां लेकर आएंगे, हम देख रहे हैं गाड़ियां कैसे पार्किंग करते हैं, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को रखना ये हराम है, हराम। इमादतुल अदा अनिल तरीक, ये ईमान का हिस्सा है कि रास्ते में से तकलीफ देने वाली चीजें हटाना ये ईमान का भाग है, अब उसमें अब तकलीफ देने वाली चीजें रखना कैसे हो। इसलिए गुजारिश है ये मोटे मोटे अमाल है, हम इन अमाल को समझें, हम अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने मौका दे रात को जल्दी सो जाएं, आज रातें बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी रातें हैं, अच्छा वक्त लेकर सुबह में उठें, अल्लाह से आहोदारी करें। हम सबको उम्मत का दुख है, दर्द है, अपना दुख है, दर्द है, हम दो रकात पढ़कर अल्लाह से कहते हैं, हम और कुछ तो नहीं कर सकते, हम दो रकात तो पढ़ सकते हैं, सदका तो दे सकते हैं, अल्लाह से मांग तो सकते हैं, ये मांगने की रात है, अल्लाह को आहोदारी करने की रात है। हमारी दुआएं छोड़ गई, हमारा मजमे ने दुआएं छोड़ दी है, किताब हमारे मजमे ने फरमाया दुआ तो मोमिन का हथियार है, हथियार जैसे हथियारों से दुश्मनों पर फतह आदमी हासिल करता है, हम तो सारे काम अल्लाह से करवाएंगे, हमारा तो अल्लाह है, हम अपने अल्लाह से यकीन दे सकते हैं। अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट में पहुंचा दिया, ये सी दुआ ने उनको मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला है, इसी दुआ ने अल्लाह की वहां उनको मर्तबा दे दिया, मकाम दे दिया, موسی علیہ السلام کو فرعون نے بہت پریشان کیا، اسی دعا نے فرعون کے لشکر کو زمین میں دھسوایا ہے، قارون کو اسی دعا نے دھسوایا ہے. ہمارے پاس تو دعا ہمارا ہتھیار ہے. ہر نیک عمل کے بعد دعا کرو، تسبیح پڑھو دن تسبیح، اس کے بعد بھی من من میں دعا کر لو، ہر فرض نماز کے بعد دعا کر کے جاؤ، دعا کے بغیر نہ جاؤ. تو اگر امام صاحب کو دیر لگے تو اپنے دعا کر لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا نہ بولو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آیت الکرسی ہے. یہ موٹی موٹی ہماری مسجدوں سے ایسے سن سناٹے ہوئے لوگ نکلتے ہیں کہ واقعی میں کہہ رہا ہوں، نئی جماعتیں آتی ہیں نا تو وہ تو تعجب سے کہتے ہیں کیسے لوگ نکلتے ہیں، ان کے وہاں ایسا ماحول نہیں. آپ دیکھو جہاں لوگ کی جماعت میں جاتے ہو کم سے کم دعا کے بعد نکلتے ہیں. ہمارے وہاں کوئی یہاں سے نکلے گا، کوئی یہاں سے نکلتا ہے، کوئی یہاں سے، جیسے میں پکڑے میں آیا ہوں اللہ کے واسطے. مسجد میں تھوڑی سکون کے بعد، مسجد میں جتنے دن ہم کھیلیں گے، مسجد میں ہم جتنی دیر کھیلیں گے، ہم نمازیوں میں شمار ہوں گے، نمازیوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا، نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا ہمیں اجر ملے گا. نماز کے بعد سکون کے ساتھ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، آیت الکرسی پڑھ لو، اور اس کے بعد اور جو دعائیں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ بڑا ذخیرہ ہے، ابھی ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مرنے کے بعد وہ بڑا وزن دار. اس کی دعائیں اللہم اعینی علی تلاوت القرآن وذکر و شکر و حسن عبادتک، اللہ مجھے میں تیری عبادت نہیں کر سکتا ہوں، اللہ کو مجھے کام کرنے کی ہمت دے، ورنہ لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی. مسجد میں بیٹھے سنت پڑھنے کی ہمت نہیں، مسجد میں بیٹھے قرآن پڑھنے کی ہمت نہیں، مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھنے کی ہمت نہیں، اللہ ہمت دیں گے تو آئے گی. یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. تو یہ موٹی موٹی دعائیں، اس میں نمازوں کو ہم سکون کے ساتھ پڑھیں. مسجد میں آئے تو موبائل بند کر لیں، موبائل بند، مسجد میں باتیں نہ کریں. ہم پورا دن فارغ ہوتے ہیں، 10 منٹ کا عمل ہوتا ہے نماز کا، اور اپنے وہاں دیکھ رہے ہیں 5-4 رکعت پڑھنے میں 10 منٹ بھی نہیں لگتی ہے. اتنی دیر بھی ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم کب خاموش رہیں گے؟ خاموش رہنا سیکھ لیا بہت سکون ملے گا. اور یہاں اس طرح کے ہم نے انتشار پیدا کر دیا، لیکن ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، ہم سے تو یہ کہیں گے اس کو کچھ میں کہوں گا یہ مطلب نہیں کر دے گا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ہمیں اس کا دھیان کرنا ہے، ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہم مسجد کا بھی خیال کریں، نماز سکون سے ہو، اور نماز اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائیں، اذان کے ساتھ آ کر سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد آگے کے سبوں میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کریں. اور یہ مسنون اعمال ہے، یہ رات کی تسبیح ہے، صبح کی تسبیحات ہے، 3 تسبیح صبح کی، 3 تسبیح شام کی، ان اعمال کے ساتھ گزریں، جمعہ کے دن کی قدر ہم کریں. اللہ آیت یہ آج کی رات تو چلی گئی، ان شاء اللہ ہمیں جو جمعہ نصیب ہوتا ہے اس رات کا خصوصا اہتمام کریں، فجر کی نماز جماعت سے ہماری روز ہو، اور اس کے بعد چلے کہاں پڑھیں، جمعہ کی تیاریاں کریں. اثر کے بعد جمعہ کے دن دو گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں تھکاوٹ قابل ہوتی ہے، یا تو امام جب بیٹھتا ہے اس کے دو خطبوں کے بیچ کی وہ گھڑی ہے، یا جمعہ کے دن سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے کی وہ گھڑی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام طے کیا تھا، وہ غلام ان سے کہہ رکھا تھا کہ جب غروب کا وقت ہو مجھے آ کر بتانا، وہ فوراً دعاؤں میں لگ جاتی ہے. غروب سے 10 منٹ پہلے جمعہ کے دن خصوصاً دعائیں قبول ہوتی ہے، اس میں لگیں. اور جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھو. پیر اور جمعرات کو ہمارا نامہ عمل اللہ کے پاس آتا ہے، اسی لیے پیر اور جمعرات کو روزے رکھنے کا حکم، اتنا پہلے روزہ رکھو پیر جمعرات میں تاکہ اللہ کے پاس جب ہمارا نامہ عمل جائے تو روزے سے ہو. اور جمعہ کے دن ہمارا دفتر حضور کے پاس جاتا ہے، حضور کے پاس. تو اس دن اتنا کثرت سے درود پڑھو جتنا ہو سکے، 1000-2000 جتنا ہو سکے فرض وقت میں درود ہی درود، اور خصوصاً عصر سے مغرب کے وقت، اس لیے کہ جمعہ کا دن مغرب کے وقت ختم ہو جائے گا. عصر سے مغرب میں جتنا ہو سکے لایا جتنا بیٹھے درود میں لگائیں، تو وہ یہ ہمارا ذخیرہ بنے گا. ابھی آج ہم نے سورہ کا پڑھی نا، اس کی آخری آیت ہے، من کا نیر جو ہے اور بھی فلیعمل عمل الصالحات، جو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے وہ عمل لے کر اللہ کے پاس آئے. یہ عمل ہے جو ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کرو، ان شاء اللہ صرف سب نیت کرتے ہو اللہ کی توفیق دے. سبحان اللہ.